ओम शांति। कॉन्फ्रेंस हॉल में लीना बहन जी का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आप 38 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और 26 वर्षों से ईश्वरीय सेवा दे रहे हैं। अभी वर्तमान समय में भुवनेश्वर सब जोन इंचार्ज हैं आप। आपकी पूरे इंडिया में सभी जगह घूम घूम के सेवाएं चलती रहती है। अभी हम लीना बहन से सुनेंगे कि कैसे बाबा का बनने के बाद जीवन कितना सरल और हल्का होकर के आगे बढ़ता है। लीना बहन जी सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी भाई बहनें बहुत प्यार से बोले ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भगवान के बच्चे बड़े ही भाग्यवान हैं और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रही हूँ कि इतने सारे देवी देवताओं के सामने बैठने का और उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। पूछा जब बहन जी ने हमें आदेश दिया कि आज भाई बहनों से आपको मिलना है तो हमने पूछा कि हम क्या शेयर करें सबसे, तो कहा जो अभी वर्तमान समय आपकी चर्निंग चल रही है, विचार सागर मंथन चल रहा हो, ऐसे किसी टॉपिक पे सभी से बात करें तो सबको अच्छा लगेगा। रिसेंटली एक टॉपिक जो मन में अच्छा मनन चिंतन चल रहा है वो है रिलैक्स, रिकनेक्ट एंड रिज्यूमेट। तीन शब्दों पे बाबा जो वर्तमान समय का पुरुषार्थ बता रहे हैं उसको कनेक्ट करके कुछ विचार सागर मंथन किया है। सबसे पहली स्थिति, ऊंची स्थिति तक पहुंचने के लिए, रिज्यूमेटेड स्टेज को पाने के लिए, इतना ऊंचा स्थिति बनाने के लिए सबसे पहली जो बात करनी है वो बच्चों को रिलैक्स हो जाना है। जो रिलैक्स शब्द को समझते हैं वो जरा हाथ उठाएं, क्या होता है रिलैक्स? अच्छा, बाबा के शब्दों में साइलेंस। रिलैक्स क्या होता है कि हम अपने स्वधर्म में, स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। स्वस्थिति जो है वो थकावट वाली नहीं लेकिन एनर्जी देने वाली होती है। कैसे? आपने कभी एक्वेरियम देखा है, मछली देखा है? देखा है सभी ने मछली? मछली रात को सो जाती है, ठीक है कि नहीं, दिन में उठती है, शाम को फिर, दोपहर को फिर सो जाती है, ऐसा होता है? मछली सोती कैसे है? पानी में है, अगर मछली सो जाए तो क्या होगा? हाँ जी, डूब जाएगी या पता नहीं नीचे कहाँ जाएगी। मछली कभी सोती नहीं है। मछली सारा दिन 24 घंटे, आप उसके मिनट्स निकाल लीजिए, सेकंड निकाल लीजिए, हाँ, जब से उसका जीवन शुरू होता है, जन्म होती है, तब से ही मछली क्या करती है? तैरती रहती है। मतलब जो चलना फिरना, तैरना, अस्थिरता, यही उसका जीवन है, वो उसका नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्वस्थिति है। इसलिए मछली तैरते तैरते कभी नहीं थकती है। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं, हमें अगर सारा दिन चलने को बोला जाए, हमें अगर सारा दिन जागृत होकर के बैठने को ही बोला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? थक जाते हैं। थकते हैं कि नहीं थकते हैं? तो क्या है कि अगर इन थकावटों से दूर जाना है तो उसकी विधि ढूंढनी पड़े, क्यों थकते हैं। आज के मनुष्य आत्माएं शरीर से जितना ज्यादा नहीं थकती हैं, ज्यादा किससे थकती हैं? मन से थक जाती हैं। तो मन से थके नहीं और थक बने रहे, उसको जो रिलैक्स स्टेज कहे वो कैसे प्राप्त करना है? बाबा ने हमें उसके लिए बताया कि बच्चे आपका जो ओरिजिनल स्टेज है वो कौन सा है। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए बाबा हमें एक दूसरे को मिलते ही क्या बोलने को बोलते हैं? ओम शांति। क्या बोलने को बोलते हैं? ओम शांति। क्या बोलने को बोलते हैं? ओम शांति। ठीक है कि नहीं? अब ये ओम शांति में क्या रखा है? स्वस्थिति की अनुभूति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और क्या गहराई है इसमें? शांति के सागर शिव बाबा मेरे पिता हैं और शांति धाम मेरा घर है, शांति मेरा स्वधर्म है। तो ये शांति या साइलेंस, डीप साइलेंस बाबा जिसको बोलते हैं, वहां तक बच्चों को पहुंचना है। ये साइलेंस क्या है? संपूर्ण रिलैक्स होने के लिए हमें संपूर्ण साइलेंस की जरूरत है। साइलेंस क्या है? जितनी हम साइलेंस को गहराई से समझेंगे उतना हमारा आत्म अभिमानी स्थिति ऊंची क्वालिटी का बनता जाएगा। हमारी स्वस्थिति बहुत गहरी, बहुत अच्छी, बड़ी उन्नत क्वालिटी की बनती जाएगी। कई बार हम जानते हैं, बात भी करते हैं साइलेंस के बारे में, लेकिन साइलेंस को और गहराई से समझने की जरूरत है। क्या है साइलेंस? स्टिलनेस, शांति, एकदम स्थिर। आप जानते हैं कोई भी चीज स्थिर कब रह सकती है? हर एक स्थिर चीज में साइंस ने ढूंढा कि कुछ ना कुछ बहुत गतिमान है, इसलिए वो स्थिर है। हर एटम में, अणु में और तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है कि नहीं? वो तीनों चीजें जो है वो गतिमान है, वो चलते रहते हैं बहुत फास्ट गति से, तभी वो स्थूल है। पृथ्वी टिकी हुई है, हमें लगता है कि पृथ्वी एकदम स्थिर है, लेकिन पृथ्वी क्यों स्थिर है? हमें क्यों स्थिर लग रहा है? क्योंकि वो गतिमान है। कहां घूम रही है पृथ्वी? कहां घूमती है पृथ्वी? सूर्य के आसपास घूमती है ना। तो ये स्थिरता और ये मोशन, जो अस्थिरता, चलना, गति जिसको बोलते हैं, इसका आपस में बड़ा कनेक्शन है। तो जो शांति है, जो साइलेंस है, वो किस प्रकार का है? एक सुंदर डेफिनेशन ढूंढा है, या क्या कहें, उस प्रकार की एक अनुभूति है जिसे आप सब अनुभव करें। क्या है साइलेंस? साइलेंस में एक स्थिरता है। जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक हम चार्ज नहीं होंगे। तो मन को एकदम शांत करके चार्जिंग लेवल में लाने के लिए मन बिल्कुल शांत, और उस शांत मन में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ये साइलेंस, ये मौन, हिंदी में उसे हम मौन कहें, तो वो मौन किस प्रकार का रहेगा, साइलेंस किस प्रकार का रहेगा? किसी ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बनाया है, आप सभी उसे अनुभव करें। सब सीधे बैठ जाएं एकदम योग युक्त अवस्था में और उस साइलेंस को अनुभव करें। किसी ने कहा, चित्त के आकाश को विचारों रूपी बादलों से संपूर्ण मुक्त कर दें। देखें, मेरा चित्त एक विशाल आकाश की तरह है और उसमें ये विचार, मेरे जो थॉट्स है, वो बादलों की तरह है। धीरे धीरे वो बादल छटते जा रहे हैं। जैसे ही बादल सब छट गए तो उस आकाश में चेतना के सूरज का उदय होता है। चित्त के आकाश में मेरी चेतना का सूरज उदित हो रहा है, जिसमें बाबा ने मुझे बताया कि मैं एक शुद्ध पवित्र प्रकाशमान आत्मा हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को सूरज के रूप में देखूं, मेरी चेतना सूर्य की तरह है और उस सूर्य की जो आभा है वो शांति है, उस सूरज का तेज शक्ति है, उसकी किरणें आनंद है। जब आत्मा इस स्थिति को अनुभव करती है तो वो उसका मौन या साइलेंस है। कैसी अनुभूति है? अपनी चेतना को बहुत उदार, बहुत विशाल बनाएं। मेरा चित्त बहुत विशाल होता जा रहा है आकाश की तरह। ये आकाश बिल्कुल क्लियर है, साफ है, स्वच्छ है और उस स्वच्छ आकाश में मेरी चेतना सूर्य की तरह दीप्तमान है, जिसमें अकट शांति है, अखंड शांति है, अपार शक्ति है। एक बेहद का आनंद है। आत्मा जब इस स्थिति में स्थिर है तो वो एकदम रिलैक्स महसूस करती है। और ये अनुभूति उसके चेहरे से झलकता है। आपने कभी तपस्वियों को, ऋषियों मुनियों को तपस्या करते देखा है? दादी जी का एक फोटो है योग करते हुए, योग युक्त फोटो, आपने सभी ने देखा होगा, बड़ी दादी जी का ही। उस फोटो में दादी की वो मुद्रा दिखाई दे रही है। दादी बहुत शांत भी दिख रही हैं, बहुत शक्ति रूपा भी है और आनंद की भी अनुभूति उसमें दिखाई दे रही है कि किस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। राजयोगी की एक ऐसी स्थिति आती है जो उसके चेहरे पे वो झलक, वो रूहानियत दिखाई देती है कि इसे बहुत शांति की अनुभूति हो रही है, बहुत शक्तिशाली ये आत्मा है और आनंदित है। ये स्थिरता है। अभी हम स्पार्क में गए थे, वहां श्रीकांत भाई ने बताया कि कुछ साइंटिस्ट आए हुए हैं डीआरडीओ से और वो लोग एक इक्विपमेंट लेके आए हैं जिसमें ईईजी लेकर के वो लोग हमारी मानसिक स्थिति को चेक करेंगे। एक आम व्यक्ति जो राजयोग नहीं जानता है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, और जो राजयोगी, जो अच्छे राजयोगी हैं, जो पुराने समय से, बहुत समय से योग करते आ रहे हैं, योग का उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ा है, और जो नए नए राजयोगी अभी अभी योग सीख रहे हैं उनके मन पे राजयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में राजयोग का मन पे क्या इम्पैक्ट होता है। एक राजयोगी जब बातचीत कर रहा है, जब अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो रही है, वैसा रिकॉर्डिंग करके वो क्या करने वाले हैं बताइए, क्या काम में आएगा। संसार में मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है, लोगों के मन अस्थिर होते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए, उनके मन में उमंग उत्साह लाना बहुत मुश्किल है। लगभग लोग भयभीत होते जा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को अगर राजयोग सिखा दिया जाए तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस सबको जानने के लिए वो एक रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है लगभग सभी भाई बहनों का भी वो कभी न कभी किसी न किसी की बारी आए और चेक करें, तो हम वो मशीन से जब चेक करेंगे तो दूसरी बात है, लेकिन मैं अपने आप को चेक करूं कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी रहती है। जब बाबा याद है, जब मैं अपने आप को बाबा की गोदी में महसूस कर रहा हूं, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ तो मेरी स्थिति क्या है, और जब मैं बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, बॉडी कॉन्शियस हूँ, स्थूलता में हूँ, देह अभिमानी हूँ, उस समय मेरी स्थिति क्या है, उस समय की मेरी फीलिंग्स क्या है, किस प्रकार के वाइब्रेशंस मुझे आत्मा से निकल रही हैं, वो मुझे देखना है। तो सबसे पहली बात है कि मुझे रिलैक्स टेक्निक सीखना है कि मैं संपूर्ण रूप से शांत होके अपने ओरिजिनल स्टेज में कैसे आ सकूं। जब तक हम ये जीरो लेवल पे नहीं आएंगे, रिलैक्स स्टेज में नहीं आएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। इसलिए राजयोगी को पहले पहले शांति की अनुभूति, साइलेंस की अनुभूति या ये रिलैक्स की अनुभूति, मौन जिसे कहें, संपूर्ण मौन, शांति, साइलेंस, उसकी अनुभूति करना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो प्रोसेस है साइलेंस का, उसमें हमें ये सारा कुछ मिल जाता है, रिलैक्स भी होते हैं, उसके बाद रिकनेक्ट होते हैं। रिकनेक्ट वास्तव में क्या है, हमारी स्मृति को लाना है, हमारी अपनी स्मृति को, जो चेतना को जागृत कर रहे हैं, जिस सूर्य को उदय कर रहे हैं, उस सूर्य को उदय करना है। चेतना क्या है, चेतना में मन बुद्धि संस्कार तो हम बताते ही हैं, वो तो पहले दिन में ही हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन तीन और सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की हैं, वो है स्मृति, वृत्ति और अनुभूति। आप सभी ने उसके बारे में भी पढ़ा होगा, जगदीश भाई साहब ने चित्र में भी, हाँ वो जो राजयोगा मेडिटेशन वाले पिक्चर्स में भी बनाया हुआ है उसको, कि तीन और चीजें, तीन और सूक्ष्म चेतनाएं आत्मा की, वो है स्मृति, वृत्ति और अनुभूति। हमारी स्मृति परिवर्तित हो जाती है। क्या स्मृति परिवर्तित होती है, मैं शरीर हूं, मैं फलाना व्यक्ति हूं, क्या स्मृति बाबा दिलाते हैं, मैं आत्मा हूं। कौन हूं मैं, आत्मा हूं। तो मैं शरीर से, शरीर का जो भान है, देह भान जो है, उसे परे जाता हूं कि मैं शरीर नहीं लेकिन एक चैतन्य शक्ति, ज्योति, आत्मा हूं। मेरा मुझ आत्मा से जो कनेक्शन है वो आत्म रूप का है, और ये जो रियल कनेक्शन है वो मुझे पावरफुल बताता है। अगर बाबा ने कितनी बार मुरली में, अभी अभी के मुरलियों में भी बोल दिया है कि शुरू शुरू में बाबा ने क्या किया, स्त्री भान से परे किया, दादियों दीदियों को ये भुला दिया कि हम कोई स्त्री हैं, शरीर स्त्री का है, फीमेल बॉडी है, ऐसा कभी स्मृति में रहा ही नहीं, कोई मेल फीमेल इस प्रकार की भावना से किसी को देखा ही नहीं, ये भाई है, ये बहन है, ये मेल है, ये फीमेल है, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, नहीं। क्या याद दिलाया बाबा ने, मैं शिव शक्ति हूं। और सुंदर बाबा ने मुरली में पॉइंट कही, बहुत अच्छा लगा, बाबा ने बहुत बार यही प्रैक्टिस कराया, मैं चतुर्भुज विष्णु हूं। कौन हूं मैं, चतुर्भुज विष्णु, सुना है ना मुरली में बाबा ने जब कहा चतुर्भुज विष्णु हूं, माना मुझ आत्मा में दोनों ही रोल, दोनों ही पार्ट प्ले करने की कैपेसिटी है, मैं पुरुष भी बन सकता हूँ, मैं नारी भी बन सकता हूँ, जब जैसा कॉस्ट्यूम मिलेगा तब वैसा रोल करने वाली मैं आत्मा हूँ। अभी क्या शरीर है, अब क्या कॉस्ट्यूम है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ उसमें सब संस्कार है। तो बाबा ने बहनों को भाइयों वाला काम दिया, भाइयों को बहनों वाला काम दिया, इसलिए सेवाएं दी ताकि क्या हो, शरीर के भान से दूर चले जाए। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं कभी दादी दीदियों के और दादाओं के, हम चंद्रहास दादा थे वो भी इस पे अपने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते थे कि कैसे देह भान से परे बाबा सेवाएं देते थे, तो ये भाई कर रहा है कि बहन कर रहा है उसकी स्मृति नहीं। दादियां हमारी अच्छी ड्राइवर्स ही नहीं थी, लेकिन ट्रक भी चला लेती थी, खाली गाड़ी, चार पहियों वाली गाड़ियां चलाए, कार चलाए इतना नहीं, लेकिन ट्रक भी ड्राइव कर लेती थी। शरीर भान ही नहीं, मैं बहन हूं ऐसा नहीं सोचते थे, शिव शक्ति है, बाबा जो सेवा देगा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। और भाइयों को भी जो सेवा मिली, झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, हाँ जो भी सेवा मिल गया भाइयों ने वो भी सेवाएं की। तो क्या हुआ कि शरीर का भान भूल जाए और क्या याद रहे, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। अपने आप से मेरा कनेक्शन, मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ठीक है, फिर दूसरों के साथ कनेक्टिविटी। भाव स्वभाव कब आता है? जब हम शरीर को देखते हैं। ठीक है कि नहीं, फलाना ऐसा है, फलानी वैसी है, आत्मा कैसी है, नहीं कौन कैसा है, शरीर कैसा है। और वो शरीरधारी व्यक्ति भी इस जन्म में जो रिएक्ट कर रहा है वो उसका इसी जन्म का संस्कार है। जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो कभी आदि संस्कार नहीं हो सकता है, उसके दैवी संस्कार हमें अच्छे नहीं लगे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान समय उसमें जो आसुरी क्वालिटीज आ गई हैं, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका जो कार्य व्यवहार में आने से रूप दिखाई देता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है ना। तो इसलिए अगर मैं उसे शरीर के रूप में देखता हूँ, देखती हूँ, तो क्या होता है, भाव स्वभाव आते हैं, उसमें हमारा एनर्जी बर्न होता है, हमारा एनर्जी, हमारी ताकत खत्म होती जाती है, देह देखने से ही ताकत कम हो जाती है। अपने यहाँ पहले बड़ा सुंदर स्लोगन लिखा रहता था, अभी तो सारे स्लोगन चेंज हो गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन पुराने पुराने जो स्लोगन है, पुराने भाई बहनों को याद होगा, देहाभिमान, क्या लिखते थे, देहाभिमान पतन की जड़ है और आत्मअभिमान, हाँ हाँ बोलिए, आत्मअभिमान उन्नति की सीढ़ी है। कुछ कभी उस समय कैप्शंस होते थे और जैसे नहीं, उसमें से एक बहुत मुख्य कैप्शन ये होता था कि आत्मअभिमान उन्नति की सीढ़ी है और देहाभिमान पतन का जड़ है। देहाभिमान से देखते हैं पतन होता है क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है, आत्मा की शक्तियां कम होती जाती हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा को देखने लगेंगे, आत्मअभिमानी बनेंगे, तो क्या होगा, शक्तियां स्टोर होने लगेंगी, आत्मा रिचार्ज होने लगेगी, आत्मा शक्तिशाली होने लगेगी, आत्मा में स्थिरता आने लगेगा। ठीक है, तो दूसरों से किस हिसाब से कनेक्ट होना है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और उसमें बाबा ने बहुत गहराई दी है, देव आत्माएं हैं, देवी देवताएं हैं। आज पार्क में गए थे सुबह और सूरज भाई ने क्लास कराया सतयुग के बारे में। हम जो स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। हम में से जो सतयुग में जाके राजा या विश्व महाराजन बनना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। जो सोचते हैं मैं सतयुग में राजा या विश्व महाराजन बनूंगा वो जरा हाथ उठाएं, बहुत लंबा हाथ उठाएं। अच्छा भाई, अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, संसार के किसी भी कोने में आप जाइए, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए, कितने बड़े पार्लियामेंट में जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जहां कोई लोग ऐसा नहीं मिलेगा, इतने लोग जो क्लेम करें कि हम विश्व महाराजन बनने वाले हैं, हम राजा बनने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। और ये इतनी संख्या में भाई बहने इस प्रकार से बोल रहे माना ऐसा सोच रहे हैं, सोच रहे माना कहीं ना कहीं निश्चय है। और ये ख्याली पलाव नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर वहां पे भी भाई बहनों ने उसके बारे में जो बोला, ये हमारा ख्याली पलाव नहीं है कि शेख चिल्ली का वो जो मनन चिंतन नहीं है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, वो लेके जा रहा हूँ और ठा हो गया सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चेतना है ये हमें भगवान ने दिया है, स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी ने, सर्वशक्तिवान परमेश्वर परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे तुम मेरे जो बनते हो ना, वो राजाओं के राजा बनने वाले हो। कहा कि हम अपने धर्म सत्ता और राज्य सत्ता खुद स्थापित कर रहे हैं, हम अपनी पवित्रता के बल से धर्म सत्ता स्थापित करेंगे और अपने योग के बल से राज्य सत्ता स्थापित करेंगे। तो ये योग और पवित्रता की जो शक्ति है वो हमें राजा बनाने वाला है। तो हम इतनी महान आत्माएं हैं, जो अपने आप को इतनी महान आत्मा के रूप में देखेगा वो दूसरों को भी देखेगा कि सतयुग में ये भी आत्माएं देवी देवताएं होंगी, है कि नहीं। देखो बाबा ने बहुत बार कहा कि बच्चे ये जो मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हो ना, वो कहाँ है, अभी कहाँ है बताइए, 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ है, कहाँ है, ये देखो बैठे, ठीक है कि नहीं। तो जो आत्मा उस ऊंची नजर से देखेगी, उस स्मृति से देखेगी कि ये वो देवी देवताएं हैं, जिनको भगवान बनाते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा जिन्हें चेतन मूर्ति के रूप में बनाते हैं वो ये हैं, ये वो आत्माएं हैं। तो आत्माओं के साथ मेरी कनेक्टिविटी, मेरा कनेक्शन उतने ही ऊंचे रूप का होगा। तीसरा जो है, समय होता जा रहा है तो इसलिए थोड़ा उसको फास्ट करते हैं। तीसरा जो रिकनेक्शन है हमारा वो परमात्मा के साथ, स्व के साथ, दूसरी आत्माओं के साथ और परमेश्वर परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ जो अल्टीमेट पावर हाउस है। चार्ज कैसे होता है, रिचार्ज कैसे होता है कोई चीज पावर हाउस से कनेक्ट होकर के। तो जो अल्टीमेट पावर हाउस है वो कौन है, शिव बाबा परमात्मा। आत्मा जैसे ही उनसे कनेक्ट होती है वैसे ही शक्ति का प्रवाह होने लगता है। और जो शक्ति शिव बाबा हम बच्चों को देते हैं, आत्माएं जो शक्तियां शिव बाबा से रिसीव करती हैं वो क्या है, कहते हैं ना आत्मा जो है वो सतो प्रधान होती है, सतो गुणी आत्मा, सात गुण है, वही सातों गुण पहले पहले आत्मा परमात्मा से लेती है, सात रंग सात शक्तियां। आजकल काफी भाई बहने उस पर बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, तो वो शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति सब कुछ बाबा से आत्मा को मिलने लगता है और आत्मा चार्ज होती जाती है, पावरफुल होती जाती है। सुना, जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक रिकनेक्ट नहीं होंगे। जब तक वो शांति वाली स्थिति नहीं आएगी, जब तक हम साइलेंस की स्टेज में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे चित्त का आकाश बादलों से शून्य नहीं होगा, क्लीन क्लियर नहीं होगा, तब तक चेतना का सूरज उसमें नहीं दिखाई देगा। चेतना क्या है, ये आत्मा स्वरूप की स्थिति, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, सूरज की तरह दीप्तमान। और मेरी दीप्ति क्या है, शांति शक्ति आनंद। तो जैसे ही शिव बाबा से अल्टीमेट पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से कनेक्ट होकर विश्व की आत्माओं से कनेक्ट होकर के, वैसे ही वो शक्ति का प्रवाह आत्मा में आने लगता है और आत्मा दीप्तमान होकर के दिखाई देती है। मुझे हमेशा याद रहता है, मैं कई बार क्लास में सुनाती हूँ, एक हमारे कोई लौकिक रिलेटिव है, जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए सोच रही थी, मैं समझती हूँ मैं 10th में पढ़ रही थी और उस समय सोच लिया था कि मुझे अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना है और समर्पित होना है। तब उन्होंने सुना कि ऐसे हमारे परिवार की कोई बच्ची है जो साध्वी बनना चाहती है, और तो वो मुझसे मिलने आए। बहुत सारी बातें हुई जिसमें से एक बात जो मुझे याद आते ही जैसे नहीं अंदर में एक खलबली मचा देती है वो ये है, वो बैठते थे और बैठते ही जैसे ही उनका कनेक्शन जुड़ता वो गिलगिला के हंसने लगते हैं, ऐसे ऐसे उनका शरीर हिलता और सारा बॉडी, वो लोग क्या कहें, एकदम ऐसे जैसे हिलता और सारा चेहरा लाल हो जाता, आंखें ऐसे प्यार से अश्रु के धार बहने लगते कि आप उनके चेहरा देख के ही समझ सकते हो कि ये आत्मा क्या पा रही है, कोई अगाध शक्ति का फ्लो हो रहा हो, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो रही हो उनके चेहरे से दिखाई देता। बहुत 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 आनंदित होते, एकदम खिल जाते, खुश हो जाते, चार्ज हो जाते और वो वाइब्रेशंस उनके सारे शरीर से, खाली आंखों से ही तो क्या, सारे शरीर से जैसे निकलने लगता कि कोई आत्मा प्रभु प्यार में कैसे डूब गई है और कितनी शक्तिशाली हो गई है। तो वो जैसे याद रहता हमेशा कि मैं आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ तो क्या मुझे उतनी खुशी होती है, उतनी शांति की अनुभूति होती है, उतना आनंद आता है। धीरे धीरे उसके बाद जैसे ही वो शांत होते, पूरा उनका देह अभिमान दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल कट जाता, लेकिन आप उनके चेहरे में देख सकते एकदम अगाध शांति और एक अलौकिकता, एक शक्ति और एक आनंद की अनुभूति। भक्ति में भी आत्माओं में इतनी ताकत है तो हमें तो परमात्मा खुद मिले हैं। क्या मैं जब योग करता हूँ, जब बाबा से कनेक्ट होता हूँ तो वो शांति मुझ आत्मा के चेहरे पे मेरे वाइब्रेशंस में दिखाई देता है? क्या मैं शांति के वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहा हूँ चारों ओर? मुझसे शांति की किरणें बिखर रही हैं? क्या मैं शक्तिशाली अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ? कितनी शक्तिशाली हूँ मैं? आज सूरज भाई का जो क्लास था वो शक्ति पे भी था। एक राजा राज्य करता है उसकी शक्ति से, क्योंकि राजा तो राजधानी में बैठता है, लेकिन सारे राज्य में जो कुछ हो रहा होता है उसके लिए राजा जिम्मेवार होता है। बहुत सारी बड़ी गहरी बातें मैं समझती हूँ, ऐसा जानते हैं इन सब बातों को, ऐसे नहीं कोई नई बातें उन्होंने बताई। सब बातों का मनन चिंतन कभी कभी चला था, लेकिन बहुत सालों से ऑनेस्टली पूछो तो उस बारे में सोचा नहीं था। जैसे याद दिला दिया हो कि हम आत्मा कितनी शक्तिशाली रही होंगी। सतयुग त्रेता युग में तो थी ही शक्तिशाली, लेकिन द्वापर में भी हम राजाएं होंगे। द्वापर में कलयुग में भी हमारा कोई साधारण रोल नहीं होगा। कलयुग के अंत में हमारा साधारण, अभी भी हम साधारण नहीं है। सारे विश्व के आगे हम अभी भी असाधारण हैं। हम बहुत स्पेशल हैं। अगर कलयुग के अंत में हम इतने स्पेशल हैं तो सोचें कि सारे कल्प में हम कितने स्पेशल रहे होंगे। हमारी वृत्तियों से ही संसार चलता रहा होगा, तो हमारे अंदर कितनी ताकत रही होगी, कितनी शक्तिशाली हम रहे होंगे। हम आत्माओं की शक्ति से राज्य चलता रहा, धर्म चलता रहा, तो इतनी शक्तिशाली हम आत्माएं। तो अभी उन शक्तियों को फिर से बाबा से भरना है। बहुत लोग पूछते हैं, बहन जी वो विनाश विनाश आप लोग कब से बोलते आ रहे थे, विनाश क्यों नहीं हुआ? और कभी तो ये स्पेशली 2012 के बाद तो बहुत लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आए पूछने के लिए कि भाई ये विनाश क्यों नहीं हुआ। मैं अपने लिए जो मानती हूँ, जिस प्रकार से इस विनाश को हमने लिया है, हमारे लिए तो विनाश तभी हो गया था जिस दिन हम बाबा के बन गए थे। ठीक है कि नहीं? दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सफेद कपड़ा लेके उस पे डाल देते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या चिन्ह है भाई? ही इज नो मोर, ही इज डेड। ये जो है डेड बॉडी है। हमने क्या किया, क्या पहना है सभी ने यहाँ पे? हाँ जी, सफेद कपड़े पहने ना, तो हमारा तो उस समय ही शरीर छूट गया है। मृत्यु या विनाश तो उसी दिन हो गया जिस दिन बाबा के पक्के बच्चे हो गए। लेकिन प्रभु जो है, परमात्मा जो है, वो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। तो उस दया निधान बाबा ने अपने बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को, बहुत विशाल दिल से कुछ समय दिया है, पुरुषार्थ करने का समय। इस समय के बड़े अलग अलग महत्व हैं। बाबा ने कभी कभी कहते, बच्चे ये जो विनाश की बात करते हो, इसका ये मतलब हुआ कि तुम मुझे भगाना चाहते हो कि बाबा आप चले जाओ, हमें आप जैसा मेहमान नहीं चाहिए, परम धाम में जाओ, आपका साथ नहीं भा रहा है, इसका ये मतलब हो गया। तो जैसे कि ये समय परमेश्वर के साथ का, शिव बाबा के साथ का अनुभव करने का हमें एक ग्रेस मिला हुआ है। तो हर एक आत्मा, हर एक के लिए देखना, अभी ये जो 2012 गया ना, 2013 से हर एक आत्मा में एक बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, कहीं ना कहीं एक हलचल होगा। हर किसी को पता चलेगा कि अभी फाइनल डे ऑफ जजमेंट आ गया है, कयामत का समय आ गया है, कहीं ना कहीं हिसाब किताब लेने के लिए वो परमेश्वर आ रहे हैं। मैं ये नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, या यही व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा कोई इटर्नल रोल है, इस प्रकार से मनुष्य आत्माओं को अपने आप अनुभव होगा। और ये जो कम समय मिला हुआ है, इसमें हम हर किसी को पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ होने का, कर्मों को अच्छा बनाने का। तो जितना समय मिला है वो जैसे कि भाग्य से, परमात्मा की कृपा है जो आत्माओं को मिला हुआ समय है, इस समय में हमें अपने आप को संपूर्णता की ओर लेके जाना है। दूसरे शब्दों में, शिव बाबा मूर्तिकार है, ठीक है, वो हमें श्रेष्ठ मूर्ति बनाना चाह रहे हैं। तो उनके हाथों मूर्ति बनने का ये समय है। जब तक आज तो इंटरनेशनल योग है, 6:30 से योग शुरू होना चाहिए, 6:30 से योग शुरू होना चाहिए, इंटरनेशनल योग है। फिर कभी समय मिला तो आपको वो कहानी बताऊंगी, हमने इस पे कहानी लिखी हुई है। लेकिन जो भी है, इन शॉर्ट, हम सभी को अभी आज बड़ा भाग्य है कि इंटरनेशनल योग अभी 6:30 से 7:30 चलेगा, जिसमें हम सभी रिलैक्स हो जाएं, रिकनेक्ट हो जाए, मैं आत्मा हूँ, बाकी सभी आत्माओं से उस प्रकार से संबंध स्थापित करें, और फिर परमात्मा से, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी बाबा से हम कनेक्ट हो जाए और बहुत शक्तियां लेकर के अपने आप को निर्विघ्न बनाए। चलो आइए अब योग करते हैं। ओम शांति।
थे।